हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। निवेदिता ने राधिका और माधवी दोनों की बातों से परेशान होते हुए कहा, बस भी करिए, अगर वो बच्ची सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। आप लोग उसके बारे में बातें बनाना बंद कर दीजिए। एक बार के लिए अगर आप मेरे दोनों बेटों को कुछ कहेंगे तब भी मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन अनाही बहुत समझदार बच्ची है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं सुन पाऊंगी। इतना ही कहा था कि तब तक अनाही अपना पर्स लेकर बाहर आ चुकी थी। अनाही ने निवेदिता के पास जाते हुए कहा, 9 बजे ज़रूरी काम है, मैं वहां से सीधा ऑफिस जाऊंगी और फिर शाम को आऊंगी। निवेदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा टाइम पर लंच कर लेना बस, पर अपना ख्याल रखना। अनाही हल्का सा मुस्कुराई और फिर तेज़ कदमों से चलती हुई घर से बाहर निकल गई। ठीक उसी वक्त रवि भी कॉफ़ी की ट्रे लेकर हॉल में आ गई। निवेदिता की बात सुनकर माधवी और राधिका दोनों को ही अच्छा नहीं लगा था। माधवी ने गहरी सांस लेते हुए रवि के हाथों से कॉफ़ी लेकर कहा, ठीक है, तुम्हारा परिवार तुम्हारी बहू, हम कौन होते हैं कहने वाले, आगे से ध्यान रखेंगे, जितना कहते हैं उतना भी नहीं कहेंगे। निवेदिता ने जल्दी से कहा, नहीं, आपका पूरा हक है, आप बोल सकते हैं, लेकिन अनाही के लिए मैं थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। जिस लड़की की वजह से मेरे घर में खुशी आई है, मैं कभी उसके बारे में बुरा नहीं सुन पाऊंगी। निवेदिता के ये बदले हुए तेवर भी अनाही की वजह से थे, पर माधवी और राधिका शिवाय दांत पीसने के कुछ नहीं कर सकती थीं। माधवी ने अपने मन ही मन कहा, इस बहू के आने की वजह से तुम्हारा बेटा पूरा पागल ना हो जाए तो मुझे कह देना, बहुत जल्दी पछताओगे तुम। वहीं दूसरी तरफ अनाही ने ड्राइवर को डॉक्टर रश्मि का एड्रेस दिखाया और फिर खुद बैक सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी में बैठने के बाद अनाही ने अपना फ़ोन उठाया और जूली को कॉल लगाई ताकि उसे बता पाए कि उसे ऑफिस में आने में देर हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो रोहान से मिलने जाए और फिर उसके पास ही रह जाए तो आज ऑफिस में ना जा पाए। जूली के फ़ोन उठाते ही अनाही ने जल्दी से कहा, आई एम रियली सॉरी जूली, तुम्हारी विदान सर आज ऑफिस नहीं आ रहे हैं और उन्होंने मुझे कुछ काम दिया था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो क्या तुम आज संभाल लोगी? जूली ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, हाँ मैं संभाल लूंगी, बस आप मुझे ये बता दीजिए रोहान सर और विहा मैम आएंगे या नहीं। अब अनाही उसे क्या बताए, उन दोनों की वजह से ही तो आज वेदांत और अनाही ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। अनाही ने जल्दी से कहा, हाँ आज वो दोनों भी नहीं आएंगे, सिर्फ तुम अकेली रहोगी। ये सुनकर जूली ने चैन की सांस ली और फिर खुश होते हुए बोली, फिर ठीक है, मैं फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं सबको संभाल लूंगी, आप आराम से अपना दिन एंजॉय करना। उसका ये जवाब सुनकर अनाही खुश हो गई और फिर कॉल कट कर दिया। उसने सीट पर अपना सिर टिकाया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में सब बच्चे परेशान हो गए थे वेदांत को ऐसे अचानक देखकर। वेदांत निमानी को हर कोई जानता था, लेकिन वो आज उनके कॉलेज क्यों आए थे ये किसी को नहीं पता था, जब तक कि क्लास शुरू नहीं हुई थी। जैसे ही क्लास शुरू हुई और वेदांत विहा का हाथ पकड़े क्लासरूम में गया तो क्लास में मौजूद सारी लड़कियों की सांस रुक गई और लड़के भी आंखें फाड़े वेदांत की तरफ देखने लगे। सामने खड़ी फीमेल टीचर ने अपना दुपट्टा सही करते हुए मुस्कुराकर कहा, वेलकम सर, आज मुझे आपके सामने लेक्चर देना है, ये सोचकर ही मैं नर्वस हो रही हूँ। इतना बोलकर उसने फर्स्ट बेंच पर बैठी लड़कियों की तरफ देखकर कहा, आज आप लोग पीछे बैठिए, यहाँ सर को बैठने दीजिए। ये सुनकर उन लड़कियों ने जल्दी से अपना बैग उठाया और फिर पीछे की सीट पर चली गई। अब आगे की सीट पर कोई नहीं बैठा था। वेदांत ने विहा की तरफ देखा और फिर उसे बैठने का इशारा किया, जिसे देखकर विहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब सबके सामने वो हाथ से ऐसे ही इशारे करेगा तो बेचारी शर्म से तो लाल हो ही जाएगी। वेदांत विहा के बगल में बैठते हुए उसके बैग से उसके लिए नोटबुक और पेन निकालकर बोलता है, नोट्स तो तुम खुद बना ही लोगी। विहा मुंह बनाते हुए उसके हाथ से पेन और नोटबुक ले लेती है और फिर सामने देखने लगती है। टीचर भी अपनी शर्म और घबराहट छुपाते हुए पढ़ाना शुरू करती है। लेक्चर जैसे जैसे आगे चल रहा था, विहा की धड़कनें बढ़ रही थीं, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे पूरी क्लास उसी की बेंच की तरफ देख रही है, और ये सब कुछ उसे अंदर ही अंदर नर्वसनेस से भर रहा था। उसकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ रही थी। उसने घबराकर अपना एक हाथ वेदांत के हाथ पर रखा। वहीं वेदांत ने जैसे ही देखा कि विहा का हाथ किस कदर कांप रहा है, तो उसने कन्फ्यूजन में धीरे से कहा, क्या हुआ टोमेटो, तुम अब क्यों परेशान हो? अब तुम्हें तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही हमारे बच्चे को कुछ होगा। विहा ने गहरी सांसों के साथ धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब मुझे ही घूर रहे हैं और ये अच्छा नहीं लग रहा है। वेदांत ने आंखें उठाकर एक बार पूरी क्लास की तरफ देखा। विहा सच बोल रही थी, सब लोग उन्हें घूर रहे थे। वेदांत उठा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या टीचर यहाँ इस बेंच पर पढ़ रही है जो आप सबकी निगाहें यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही हैं? बच्चों के साथ साथ सामने खड़ी टीचर ने भी डरकर वेदांत की तरफ देखा और फिर गुस्से में बोली, अटेंशन क्लास, सबकी नज़रें सिर्फ बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। सबने एक साथ सिर हिलाया और अपनी नज़रें उस बेंच से हटा ली। वेदांत ने एक बार फिर गुस्से में कहा, अगर इस बार मैंने देखा कि कोई इधर देख रहा है तो मैं उसे क्लासरूम से बाहर कर दूंगा और उसके बाद प्रिंसिपल भी तुम लोगों को इस कॉलेज में वापस नहीं ला पाएगा। इतना बोलकर वो वापस वीहा के पास बैठ गया। पूरी क्लास शॉक एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रही थी। उसके बैठते ही वीहा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैंने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने के लिए नहीं कहा था। इससे अच्छा होता कि हम दोनों बाहर चले जाते, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। वेदांत ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो, तुम्हें किसी बात का नहीं पता है और ऐसे डरकर बाहर नहीं जाते हैं। अगर तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल लगे तो तुम भी ऐसे बोल सकती हो कि मेरी तरफ क्या देख रहे हो, टीचर यहाँ थोड़ी पढ़ा रही है। हर बार नहीं हो सकता ना टोमेटो कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हें ऐसे ही लोगों की नज़रों से बचने के लिए तुम्हें खुद भी अपनी लास्ट स्टैंड लेना होगा और इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना बोलकर उसने प्यार से वीहा के सिर पर हाथ फेरा और फिर आगे झुककर धीरे से उसके माथे को चूम लिया। वीहा रोनी सूरत बनाकर उसको देखते हुए बोली, प्लीज इतने रोमांटिक मत बनो यार, सब मुझे घूर रहे हैं। आपको नहीं पता, लड़कियों को तो कोई देख भी नहीं सकता कि वो इस वक्त कहाँ देख रही हैं। उनकी निगाहें कहीं और होती हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है और भी पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, तो आप मुझसे थोड़ी डिस्टेंस रखिए। उसके इस बात पर वेदांत के होठों पर स्माइल आ गए और उसने एक बार फिर वीहा के बालों पर हाथ फेरा और फिर टीचर की तरफ देखने लगा। वीहा भी अब सब कुछ भूलकर अपने नोट्स पर फोकस करने लगी, क्योंकि उसे पता था इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ी देर बाद वो क्लास खत्म हुई और 5 मिनट का ब्रेक हुआ। सारे क्लासरूम के बच्चे बाहर चले गए, जिसके साथ ही वेदांत ने एक झटके से वीहा को बेंच से उठाकर अपनी लैब पर बैठा लिया। उसे ऐसा करता देखकर वीहा ने घबराते हुए कहा, क्या आप क्या कर रहे हैं पतिदेव? बेशर्मी की भी एक हद होती है, ऐसा लगता है आप तो सारी हदें एक बार कर चुके हैं। मुझे लगा था कॉलेज जाकर आप अच्छे बच्चों की तरह बैठे रहेंगे, लेकिन आपकी शैतानियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। मुझे लगता है मुझे आपको सुधारना पड़ेगा। आपको अच्छे से कॉलेज जाना नहीं सिखाया है। कॉलेज किस लिए आते हैं? सिर्फ पढ़ने के लिए, ना कि रोमांस करने के लिए।
वेदांत प्यार भरी नज़रों से वीहा को बोलते हुए देख रहा था। उसका मन कर रहा था वीहा ऐसे ही बोलती रहे और वो उसे ऐसा ही देखता रहे बिना किसी डिस्टर्बेंस के।